Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य. भट्टाचार्य जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी.
थैंक यू सोनू. India's retail inflation rate eases to 5-month low of 4.31% in January 2025. Industrial output growth rate slows to 3.2% in December 2024. Benchmark domestic indices register decline for 6th straight session. Sensex slips over 100 points. Nifty closes at 23,045. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $76.35 per barrel.
भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति की दर जनवरी 2025 में कम होकर 5 महीने के न्यूनतम स्तर 4.31% पर आ गई. औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर धीमी पड़कर दिसंबर 2024 में 3.2% दर्ज हुई. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में लगातार छठे सत्र गिरावट आई. सेंसेक्स 100 अंकों से अधिक के नुकसान पर हुआ बंद. निफ्टी 23,045 पर आ गया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट क्रूड $76.35 प्रति बैरल पर था.
Let's begin with the top story. India's retail inflation eased to 5-month low of 4.31% in January from 5.22% in December 2024, as the rate of increase in food prices slowed. According to data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, inflation in rural areas stood at 4.64% compared to 3.87% in urban regions. The food inflation rate for the last month, that is January 2025, based on All India Consumer Food Price Index, is provisionally reported at 6.02%, down from 8.39% recorded in December 2024 and 9.04% registered in November 2024. Corresponding food inflation rate for rural areas stood at 6.31% for urban areas reported at 5.53%. Mr. Bhattacharya, good news coming in at last from the retail inflation, you know, point of view. It's now down to a 5-month low of 4.31%. And more specifically, you know, the food inflation has really fallen down. It's more than a 2% fall in the food inflation. How do you view it?
Well, this was anticipated. As you would remember, that the Reserve Bank of India's monetary policy that was unveiled earlier this month, they anticipated that the food inflation, not just the food inflation, retail inflation, which they closely watch, would see some sort of a deceleration, which is what has happened. It is now coming more or less in the same benchmark of the 4% range that they look at. And this, as you also pointed out, has happened mainly because of the food prices, food inflation slowing. As you know, that almost 36% of the consumer index basket, yes, the weight is given to food and beverages. And this is also a season when normally the food basket sees some sort of a deceleration in the prices. This is the season when a lot of crops, a lot of vegetables, they come into the market. And this is a price level of the month of January. The forecast is that it will stay at this level, mm-hmm, for couple of months. This quarter is supposed to see toning down of consumer inflation, which is good news for the middle class. They have already got the budget bonanza of tax relief.
Yes.
With that, if inflation is also under control. But one point I would like to note is that the food inflation that is so critical,
yes,
has not come down to that lower level,
mm-hmm,
as it has done in the rural-urban divide is very strong.
I was about to come to that.
So rural,
exactly,
inflation, food inflation is come down, but it has not come down to the way it has come down to urban level.
Yes.
Why I'm raising it is because it is underlying this, the differential is an infrastructure issue,
mm-hmm,
the delivery mechanisms. It's clear that the rural markets probably are not that efficient, but the price discovery is not as helpful and as beneficial for the consumers. Or it is also a reflection of how the trade is functioning far less efficiently in the rural part of the country than in the urban part of the country.
So, would you say, par kya hota hai? Aam taur par kis tarah ka trend rehta hai? Rural areas aur urban areas mein jo inflation ka difference hota hai, wo kya trend dikhata hai?
Normally, rural mein inflation kam hota hai, urban mein jyada hota hai. पर इस बार का जो ट्रेंड जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दर्शाता है, और दूसरी बात कि जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म जो है मे बी अर्बन इंडिया में ज़्यादा है, और तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि इस बार ये इसलिए शायद ये हुआ है कि जो रूरल इकोनॉमी में जो बेनिफिट ट्रांसफर्स जो हुए हैं, जो वेदर इट इज़ डन थ्रू द नरेगा और थ्रू द अदर वेलफेयर स्कीम्स या पीएम किसान, शायद रूरल इकोनॉमी में फ्यूअर गुड्स आर बीइंग चेस्ड बाय मोर पीपल.
सो दैट्स प्रोबेबली अ गुड थिंग.
इट्स प्रोबेबली अ गुड थिंग बिकॉज़ रूरल इकोनॉमी इज सीइंग हायर फूड इन्फ्लेशन देन द अर्बन फूड इन्फ्लेशन. सो इट्स It's a mixed bag. On the whole, it has come down. But
yes.
There are...
But you mentioned that so far as the rural economy is concerned, the rural areas, food inflation, and that's more to do with the, you know, lack of probably infrastructure. So would you say that it's something that the government needs to work on, or it's something that needs to be taken care of in terms of the infrastructure, in terms of, you know, cold storage facilities and all? That is what is going to make a difference rather than the prices per se.
Yes, absolutely. There are two things. One, as I said, that it is possible that there is a sudden surge in rural demand, which has caused this price spike in the rural economy.
Yes.
The other thing that you pointed out, that is it only underlines the significance,
mm-hmm,
of a powerful, vibrant infrastructure sector, that last point delivery, the last mile delivery of goods. And the trade probably is having less of an intermediary impact on prices in urban India than in rural India. In rural India, probably trade is taking its due share for delivery, and the prices are going up.
So, as you mentioned earlier on, you know, at the beginning of your discussion, you said that the RBI, the central bank, was expecting this cooling down. Now, with this cooling down in CPI inflation, can we expect another round of rate cut by the RBI in its next meeting after the first 25 basis points?
There are many factors at play here. Yes, a lot of people believe, experts believe, that probably in this calendar year, you may see an overall 50 basis points cut. 25 basis points have already been cut. If retail inflation maintains the kind of trajectory that has been forecast, which is staying at this level, probably I would not rule out the possibility of a further rate cut. But whether it will happen in the April policy,
yes, of course,
or whether it will happen in the June policy, it's only time can tell. The RBI Monetary Policy Committee has experts, so they will decide.
Definitely.
In fact, jo apne projections ki baat ki, to jo maujooda vitt varsh hai, uske liye projection hai 4.8% ka inflation ke liye. Aur agle vitt varsh ke liye, jo April se shuru hoga, 4.2% ka projection diya gaya hai. So, aapko lagta hai ki shayad hum us taraf badh rahe hain, expect kar sakte hain ki...
Hum badh rahe hain, par uske saath saath aapko main जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर साहब जो हैं उनकी एक ऐलान का भी आपको एक दृष्टि आकर्षित करूंगा. उन्होंने ये कहा है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फोरकास्टिंग जो मेथडोलॉजी है उसमें भी काफ़ी रिवैम्प और रिफॉर्म किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फोरकास्टिंग मेथडोलॉजी थी उसमें थोड़ी बहुत कमी नज़र आ रही थी. उसी के संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फोरकास्टिंग जो मेथडोलॉजी है, रूपरेखा जो है, वो बोथ ग्रोथ की तरफ और इन्फ्लेशन की तरफ को और भी सुदृढ़ किया जा रहा है और भी उसका संस्कार किया जा रहा है. उससे मैं समझता हूँ जो आपकी जो नंबर जो आपने जो कहा वो नंबर शायद वही बरकरार रखेंगे.
मेथडोलॉजी के साथ साथ बास्केट में भी कुछ चेंजेस,
बास्केट में नहीं चेंज आएगी, पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से वो फोरकास्ट करते हैं, जिस किस बेसिस से, उस बेसिस में फोरकास्टिंग मेथडोलॉजी में परिवर्तन और सुधार किया जाएगा, जिससे कि जो फोरकास्टिंग और फाइनली क्या नंबरें आती हैं उसके साथ ज्यादा अंतर नहीं होगा. अब तक हमने पिछले एक दो साल में देखा है अंतर आ रही थी, तो इस बार अगर आपने जैसे फोरकास्टिंग की बात कही कि 4.8 4.1 में आ जाएगी, तो जिससे कि इसमें अंतर ज्यादा ना हो, तो उसी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ठोस कदम उठा रही है जिससे कि उनकी फोरकास्टिंग मेथड और भी एकदम सटीक हो.
Mr. Bhattacharya, you of course mentioned that we will have to wait and see whether the rate cut cycle continues, whether it happens in April or June. But the fact of the matter is, like you said, if the inflation continues to cool down, and as we are hoping, all of us would hope that it continues to cool down, this will also give the central bank some wiggle room to address the slowing economy, right? The economic growth.
Sure, absolutely. I think, let's say, the 25 basis points cut in repo rate is already, some banks, as you would have seen, some banks have already taken the lead in cutting their interest rates. You will see some deposit rate softening also. Banks will like to keep their net interest margins intact. So while lending rates come down, deposit rates will also have to come down.
Yes.
And on the other hand, Reserve Bank of India is also talking in terms of a liquidity infusion.
Yes.
There is also expectation that probably a cash reserve ratio can be tweaked. So Reserve Bank of India has got many instruments at its disposal. The repo rate review is one of them. But there are many other, like open market operations, variable reverse repo auction. You have open market purchases of securities. So these are all instruments that Reserve Bank of India will be using, not just the repo rate, but also these instruments, so that the inflation rate stays below 4%.
Yes.
And the growth trajectory gets better.
जैसा आपने कहा कि inflation और growth दोनों ही प्राथमिकताएं हैं भारतीय रिजर्व बैंक की. देखते हैं कि growth को लेकर क्या आंकड़े आए हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर IIP वार्षिक आधार पर नवंबर में 5.2% के मुकाबले कम होकर दिसंबर में 3.2% दर्ज हुई. औद्योगिक उत्पादन के तीन प्रमुख कॉम्पोनेंट्स पर नजर डालें तो बिजली उत्पादन दिसंबर में 6.2% की दर से बढ़ा. इस दौरान खनन गतिविधि में 2.6% की वृद्धि हुई और विनिर्माण क्षेत्र में पहले से धीमी 3% की दर से बढ़त दर्ज हुई. सो IIP में हम एक थोड़ा स्लोडाउन देख रहे हैं. ये एक और बल देता है RBI को कि वो ग्रोथ पर अभी ज्यादा ध्यान दें. और हमने जैसा अभी आपको आंकड़े सुनाए उसमें कुछ आंकड़े हैं जो उत्साहजनक हैं. 10.3% ग्रोथ है कैपिटल गुड्स में, अगर खपत के हिसाब से देखें 5.9% इंटरमीडिएट गुड्स और 6.3% इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 8.3% ग्रोथ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में. सो आपको लगता है कि ये जो ग्रोथ का जो अभी मोमेंटम है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है, बट आगे चलकर हम आशा कर सकते हैं?
ये जो फिगर्स जो आ रहे हैं ये दिसंबर के फिगर्स हैं
जी.
और दिसंबर के फिगर्स अगर आप पिछले साल देखेंगे, पिछले साल जो दिसंबर के जो फिगर्स जो थी, मतलब 2023 के दिसंबर में, हमने सडनली काफी एक बहुत अच्छी वृद्धि दर देखी थी हमने. तो जब हम IIP के नंबर हम सालाना जो जब तुलना करते हैं तब इसमें एक स्टैटिस्टिकल इफेक्ट, जो बेस इफेक्ट भी आ जाता है. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि जो जो 77% जो वेट जो है मैन्युफैक्चरिंग में आता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी बहुत नरमी के लिए ये आपके ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसमें 3% 3.2 जो में जो भी आया है. पर अगर आप ब्रेकडाउन करेंगे इसमें कैपिटल गुड्स में अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ देखना बड़ी अच्छी बात है. पर जो जो चिंताजनक है वो है कि कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ पे, तो उसमें लगता है. और ये जो ग्रोथ अगर ये 3.2% जो हुआ है उसका प्रधान कारण ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी में सडनली एक बहुत बड़ा एक जंप आया है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अच्छा हुआ है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी का वेट बहुत ही कम है, 8% के करीब है, पर तभी मैं मानता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए. पर अगर आप अप्रैल टू दिसंबर यानी पहले 9 महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4% में है, मैं समझता हूँ कि ये आशाजनक नहीं है. जो हम टारगेट कर रहे थे उतना नहीं है, पर तब भी मैं कहूँगा कि उतनी खराब नहीं है, आगे और भी बढ़ना है. और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉल्यूम बेस्ड है, ये वैल्यू बेस्ड नहीं है. सो इसमें ये यूनिट लेवल डेटा आता है, उसमें जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इसमें नहीं आता है. तो हमें इसको और जीडीपी को एक साथ एक नज़रिया से नहीं देखना चाहिए. जीडीपी के नंबर में आपको इन्फ्लेशन नंबर वैल्यू आते हैं नंबर, और ये आते हैं वॉल्यूम नंबर. तो हमें ये इसका एक पूरी तरह से एक डिफरेंस हमें मान लेना चाहिए.
पर एक छोटा सा फैक्टर जिस पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि इन सब चीजों को वो अफेक्ट करता है, जो फिस्कल पॉलिसी जैसे हमने बजट में देखी और मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें जो तालमेल दिखाई दे रहा है, दोनों ग्रोथ को बढ़ावा देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये इकोनॉमी को मोमेंटम देगा?
देखिए, मैं समझता हूँ कि तालमेल हर समय जरूरत थी. बीच में जो हमें लगा कि शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रोथ में के बजाय इन्फ्लेशन कंट्रोल में ज़्यादा जोर दिखा रहे हैं, पर इस वक्त जिस तरह से जैसे वित्त मंत्री ने भी कहा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पॉलिसी निर्णायक जो कमेटी जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कमेटी, उन्होंने भी जो निर्णय लिया है उससे ये लगता है कि दोनों मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी और फिस्कल पॉलिसी अथॉरिटी दोनों का ही जो मूल उद्देश्य जो है वो ग्रोथ को मेंटेन रखे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखे. और जो आप बजट को देखा आपने, बजट में भी जो कंजम्पशन बूस्ट से किस तरह से ग्रोथ को वापस लिया जा सके और उसके साथ साथ फिस्कल कंसोलिडेशन का प्रोग्राम भी एकदम इंटैक्ट है. तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं और इकोनॉमी के लिए कोई ज़्यादा चिंताजनक बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री की समन्वय की अभाव से नहीं होगी.
मिस्टर भट्टाचार्य, यू नो वाइल ऑन द सब्जेक्ट, नाउ वी सॉ दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज ग्रोन बाय 3%, बट द पेस ऑफ ग्रोथ वॉज अ लिटल स्लोअर. सो वी लुक एट द बिगर पिक्चर व्हेन इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, यू नो वी आर प्लानिंग टू बिकम अ चाइना प्लस वन व्हेन आवर एम इज दैट, व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट दिस सेक्टर, यू नो, सो दैट वी कैन achieve that aim?
Well, I think there are quite a few steps that have been talked about. Even the union budget last year talked about a national economic policy framework for second generation factor market reforms. You essentially need to make your factor markets, which is the land, labor particularly, and capital. I think there are some basic reforms are there, but particularly in the area of land and labor, we need to change our laws and make them more flexible. And number two is we need to invest more in skilling and reskilling of manpower so that the manpower can be taken out of agriculture and be profitably be used in the manufacturing sector. And most importantly, we need to plug the country into various global trading arrangements and global value chains so that we are part of that system, because with the reduced functioning or effectiveness of World Trading Organization, it is very important that the global trade is functioning more on the multilateral, less on multilateral trading arrangements and more on these trading blocks. So whether it is RCEP or whether it is CGTP, BRICS. whether it is BRICS. So these are important trading arrangements, and India must get into these trading arrangements and probably take advantage of the global value chains and improve its manufacturing. It's a fact that the share of manufacturing is not rising, and it will not rise unless we get into this export business and undertake these basic reforms.
और आइए अब चलते हैं शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बाद सामान्य गिरावट के साथ बंद हुए. ये लगातार छठा सत्र है जब भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट आई है. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 122 अंकों की गिरावट से 76,171 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 23,045 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी रुख नकारात्मक था. मिड कैप सूचकांक 0.4% से अधिक की मंदी में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई.
Benchmark domestic equity indices ended with modest losses in a volatile trade today, extending their decline to sixth straight session. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 122 points to close at 76,171. The National Stock Exchange Nifty 50 fell 26 points to settle at 23,045. The broader market indices at BSE also ended in negative territory. Mid-cap index slipped over 0.4% and the small-cap index dropped almost 0.5%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies logged losses. In the top laggards, Mahindra & Mahindra shed 3.2%, ITC slipped over 2.1% and Power Grid fell 1.6%. Among the top gainers, Bajaj Financial Services rose over 2.6%, Tata Steel added over 1.6% and Larsen & Toubro gained over 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 14 out of 21 sectors ended down. In top laggards, Realty slumped more than 2.5%, Auto lost over 0.8% and Consumer Discretionary fell over 0.7%. Conversely, among top gainers, Metal rose over 0.6%, Commodities added over 0.3% and BankEx gained 0.28%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,435 companies declined, shares of 1,534 companies advanced, while shares of 97 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 18 companies hit their 52-week high, while 611 hit their 52-week low.
और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर होकर 86.89 रुपए के स्तर पर आ गया. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.88 पर था. लगातार छठे सत्र गिरावट आई है शेयर बाजारों में. क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार को इतना नर्वस कर रहे हैं और क्या अब बॉटमिंग आउट के करीब हम पहुंच गए हैं?
देखिए, आज का जो ट्रेडिंग था उसमें मैं मानता हूं कि जो वॉलेटिलिटी जो थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि एक समय जो मार्केट सेंसेक्स करीबन 1,000 पॉइंट नीचे आ गया था. उसके बाद जो रिकवरी हुई है, रिकवरी के बाद 122 पॉइंट में नीचे रुका. तो वॉलेटिलिटी का मतलब यह है कि नीचे आ गया, उसके बाद फिर रिकवरी हुई है. तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ फोर्सेस ऐसे मार्केट में हैं, आ रही हैं, जो बायस जो आ रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि मार्केट की जो पी रेशियोज़ जो हैं वो काफ़ी नीचे आ गई हैं और शायद ये परचेसिंग का, खरीदने का एक मौका है.
वैल्यूएशंस
अच्छी आ रही हैं. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगले सत्र में इसका किस दिशा में जाती है. पर जो मोटी मोटी बात जो है, ये एक अनसर्टिनिटी का माहौल है, अनिश्चयता का माहौल है. ट्रंप क्या करेंगे, टैरिफ वॉर लगाएंगे नहीं, उसमें अनसर्टिनिटी है. और उस मामले में मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मेटल स्टॉक्स जो हैं या जो बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं, आज काफ़ी अच्छा किया है, उन्होंने प्रदर्शन किया है. तो जो खुदरा निवेशक जो है उसके लिए तो अभी भी मैं कहूँगा कि सोच संभल के मार्केट में उनको निवेश करना चाहिए. पर मार्केट अब अगले अर्निंग्स के लिए वेट कर रही है. ये वॉलेटिलिटी अनसर्टेनिटी को किस तरह से आगे देखें, तो अगर अगले कॉरपोरेट अर्निंग्स में थोड़ा बहुत वृद्धि या ग्रोथ की अगर आसार नज़र आए तो मैं समझता हूँ ये मार्केट आगे जा सकती है. पर विदेशी जो निवेशक जो है अभी भी वो पैसे इस मार्केट से निकाल रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से इसमें मार्केट में अभी जुटा हुआ है.
लेकिन एक उत्साहजनक खबर, जनवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 39,687 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रवाह देखा गया। आज जारी एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में स्मॉल कैप फंडों में निवेश 22.6% बढ़कर 5,720 करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि मिड कैप फंडों में 1% से अधिक की मामूली वृद्धि देखी गई और ये लगभग 5,147 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही लार्ज कैप फंडों में शुद्ध निवेश 52% से अधिक बढ़कर 3,063 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। इसके विपरीत सेक्टोरल या थीमेटिक फंड श्रेणी में प्रवाह में गिरावट देखी गई। सो जैसा आप कह रहे थे कि वैल्यू बाइंग लगातार बनी हुई है। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। पहले एशियाई क्षेत्र, प्रमुख एशियाई बाजारों में आज बढ़त का रुख था। हांगकांग का हैंगसेंग 2.5% से अधिक के उछाल में रहा। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 0.8% से अधिक बढ़ गया। जापान के निकेई में 0.4% से अधिक बढ़त दर्ज हुई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में 0.3% से अधिक की वृद्धि आई। प्रमुख यूरोपीय बाजारों की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी के डैक्स में 0.2% से अधिक की बढ़त थी। लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक दोनों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था।
Moving on to the US markets, US stocks ended mixed yesterday as investors digested mixed corporate earnings reports. The Dow Jones Industrial Average increased by 0.28% and S&P 500 ended flat, while the Nasdaq Composite slipped over 0.3%. Meanwhile, the US Federal Reserve Chair Jerome Powell, in his opening remarks at a Senate Banking Committee hearing, said that the US Central Bank was in no rush to cut its short-term interest rate again. He stated that if the economy remained strong and inflation did not continue to move sustainably towards the 2% target, the Fed could maintain policy restraint for a longer period. Mr. Bhattacharya, what can we read? What should we be reading, you know, in the comments from the chairman, Jerome Powell's comments?
Well, I think we just now talked about the kind of the presence of a jugalbandi in the Indian market.
Yes.
And probably we are seeing not that pronounced a jugalbandi in the US market, where the US president is very clear through his statements. He wants an early rate cut, whereas the Fed Reserve chairman, from his statement, he is making any further rate cut move or rate change move conditional to maintenance of the current inflation trend.
He's being
so
very cautious.
He's being very cautious. And also, he has good reasons to be cautious, because if there is an outbreak of tariff war, which the likelihood of, of that is very, very strong, I think U.S. cannot lose its sanity over responsible policy making.
और अब चले कमोडिटीज की ओर।
Yes, let's begin with crude oil prices. Oil prices fell today, ending their gaining streak after an industry body data indicated rise in US crude inventories. The traders also weighed the hawkish remarks from Fed Chair Jerome Powell that signaled slower rate cuts this year. Brent crude was trading over 0.8% down at $76.37 per barrel, and WTI crude lost over 1% to trade at around $72.52 per barrel when reports last came in.
और चलें सराफा बाजार की ओर, जहां सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.63% गिरकर 85,130 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.4% गिरकर 94,570 रुपए प्रति किलो पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल में आपूर्ति वाले सोने का वायदा मूल्य 0.64% गिरकर 84,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मार्च में आपूर्ति वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.4% गिरकर 94,190 रुपए प्रति किलो पर था। ब्रीफ सी आपकी टिप्पणी, हालांकि आज गिरा है लेकिन ऑल टाइम हाईस के करीब है।
नहीं, सोने का तो, जो सोने की बात कर रहे हैं, तो सोने का तो मार्केट बहुत ही ऊंचे ऊंचे में जा रहा है, और जब स्टॉक मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है तो सोने की मार्केट में थोड़ी बहुत डिमांड आती है, तो वही हम देख रहे हैं और शायद यही चलता
रहेगा। सेफ हेवन डिमांड,
सेफ हेवन डिमांड है इसका।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भट्टाचार्य जी आने के लिए और इतने विभिन्न विषयों पर हमें विस्तृत जानकारी देने।
नमस्कार, धन्यवाद।
And before we close, a reminder of the headlines. India's retail inflation rate eases to five-month low of 4.31% in January 2025. Industrial output growth rate slows to 3.2% in December 2024. Benchmark domestic indices register decline for sixth straight session. Sensex slips over 100 points. Nifty closes at 23,045. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $76.35 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team, goodbye. Market Mantra.